ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से कहा है कि वे संगठित होकर सहयोग के साथ आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने वालों के साथ सख्ती से निपटें। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को कट्टर बनाने वाली ताकतों को रोकने के लिए सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते के पर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित बनाने के लिए वैश्विक दिशा निर्देशों पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में साइबर सुरक्षा, डीप फेक और गलत सूचनाओं के प्रसार की चुनौतियों को देखते हुए लोगों को ब्रिक्स से बहुत उम्मीदें हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विश्व की 40% जनसंख्या और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और पिछले 2 दशकों में संगठन ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2022 में शुरू किए गए ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र का उल्लेख किया और कहा कि ये केंद्र सभी देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित विकास तथा प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियों से निपटने का आधारभूत ढांचा तैयार करने को प्राथमिकता मानता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रबंधन के मूलभूत ढांचे और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में भी चर्चा की।
भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ माँ के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के समझौते पर पहुंचने के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच ये पिछले 5 वर्षों में होने वाली पहली औपचारिक बैठक है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स कल से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। वे 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्स शुक्रवार को अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगोव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भितरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस बीच भारतीय तटरक्षक ने चक्रवात दाना से पहले जानमाल के नुकसान से बचने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप में जूनियर भारतीय हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हरा दिया है। भारतीय टीम पहले 3 मैच जीतकर अंक तालिका में 9 अंकों के साथ अभी भी शीर्ष स्थान पर है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला शुक्रवार को न्यूजीलैंड से होगा। जर्मनी ने 2 मैचों की हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 2-0 से हरा दिया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वर्तमान विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता जर्मनी की टीम ने हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।